माने परम भगवत भक्त हैं, गुरु भी वैसे उच्च कोटि के भक्त हैं, इसलिए वो हर हैं।
तुमसे
समस्त दुखों को हरण करने वाले हैं, इसलिए वो हर हैं। भगवान कौन? गुरुदेव। इसलिए नहीं कि वो शंकर जी हैं, शंकर के जितने गुण हैं उनमें हैं, इसलिए वो हर। तुम विष्णु किस लिए हैं? विष्णु पालन करते हैं। गुरु क्या करता है?
भक्ति देकर पालन,
गुरु भक्ति देकर के उनको पालन करता है। शंकर जी सबका संहार करते हैं, गुरुदेव हमारी विपत्तियों को, दुखों को, अज्ञानता का संहार करते हैं, इसलिए हर है। और ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, ब्रह्मा जी हमारे गुरु हैं ना, आदि गुरु, वो भक्ति लता का बीज देकर के हमारा जन्म देते हैं, भक्ति का जन्म हमारे हृदय में देने वाले हैं। इस तरह से वो हरि, हर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी कुछ है। इसलिए इनका कीर्तन कोई गड़बड़ का मत समझो।
तो आप लोगों को पहले मुझे बताया है, जिनके लिए ये सब उत्सव हो रहा है गुरु पूर्णिमा, वो गुरु व्यास जी हैं, वेद व्यास। और हम लोगों का परम सौभाग्य है जो गुरु व्यास जी का जन्म ये मथुरापुरी के उस पार में, कृष्णगंगा नहीं, यहाँ पर गंगा जमुना के उस पार में जो अभी छायरी गांव है, ठीक यहीं से पार करेंगे तो पहले वो छायरी गांव आएगा, वहीं पर उसी के जमुना के बीच में द्वीप में उनका जन्म हुआ था। छायरी कैसे पड़ा आप लोगों ने सुना, उनकी मैया कौन थी?
मत्स्यगंधा,
उसका नाम था मत्स्योदरी। उनकी मैया एक अप्सरा थी, उर्वशी या कौन, और उसके से निकल करके जो गिरा मछली ने उसे पी लिया, और उसके पेट से, मछली के पेट से ये पैदा हुई, इसलिए उसका नाम हुआ मच्छोदरी। उसके शरीर से मछली का गंध आता था। वो जबकि बड़ी हुई 16, 17, 18 वर्ष की या 20 वर्ष की, तो उसको पाला एक धीवर ने, वो मल्लाहों का गांव है, धीवर ने पाला पोषा, अभी भी मल्लाह ही वहां रहते हैं। तो वो अपने को मल्लाह की लड़की समझती थी, पर सुंदरी थी, अप्सरा जैसी, अप्सरा से भी अधिक सुंदरी। वो उसका पिता, पिता मैंने अब पिता अपने को कहता था, किंतु पिता नहीं, पालन पोषण करने वाला, उसने कहा बीच बीच में नाव चलाना सिखला दिया, जैसे मल्लाह के बेटे बेटियां सभी चलाते हैं। एक दिन पराशर जी किसी कारण से इधर में आए हुए थे, उनका आश्रम उस पार था। शाम हो गई, सूर्य अस्त होने लगे, और उस समय में भयानक आंधी का जोग था। वो मल्लाह के पास में आकर के बोले, भैया हमको जरा पार करा दो नौका। तो मैंने तो नौका लेकर के बांध दिया, अब मैं नहीं चलाऊंगा, और इधर शाम हो गई, अब रात होने वाली है, और इधर मैं भयानक आंधी का जोग देख रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता, इस समय अंधकार होने जा रहा है। तो कह रहे हमको तो बहुत जरूरी जाना है। तो उन्होंने कहा, जी आप महात्मा है, बेटी तुम महात्मा को पार कर देगी? अरे क्यों नहीं, आप कहिए तो पार कर दूँ, महात्मा जी हैं, इनको पार कर दे। तो बस वो तैयार हो गई, और उनको नौका पर बिठा करके और पार कर, जब पार होकर के जब द्वीप से आया, उधर भी पानी, इधर भी पानी, बीच में जंगल जैसा, उसको कहते हैं द्वीप, टापू जैसा। वहां आते ही ऋषि ने उसकी तरफ में कुछ ऐसी दृष्टि से देखा जो देख करके सहम गई। ऋषि बहुत लंबे चौड़े और कृष्ण वर्ण के थे, पराशर जी। पराशर जी साधारण नहीं है, भक्ति के एक आचार्य हैं, पराशर संहिता भी है, बड़े विद्वान हैं। भाई गड़बड़ मत करो। तो वो उनके तरफ में देखा, और देखते ही वो सहम गई, डर गई, कहने डरने की जरूरत है, डरो मत, तुमको अभी एक लड़का होगा पैदा, और साथ साथ में एक 16 वर्ष का जैसा लड़का, लंबा चौड़ा सही डील डॉल बहुत ऊंचा, कृष्ण वर्ण का हुआ इसलिए वो कृष्ण, और दीप में आयन घर है जिसका जिसका जन्म हुआ इसलिए द्वैपायन, और भगवान की गाथा को उसने विस्तार किया विश्व में इसलिए वो व्यास, इसलिए कृष्ण द्वैपायन व्यास उनका नाम हुआ। उन्होंने कहा ये तुम्हारा ये लड़का तुम्हारा लड़का ही नहीं है, ये भगवान का अवतार है, और ये कह करके आगे बढ़ गए। बेटे ने मैया को कहा, प्रणाम किया, बोला जे अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं, तुम जब जब मुझे बुलाएगी मैं आ जाऊंगा, और जो कहेगी उसको पालन मैं करूंगा। मैया तो डरी हुई थी, देखा जी हमारी शादी नहीं है कुछ नहीं, और हमारा लड़का हुआ इतना बड़ा लंबा चौड़ा लड़का पैदा हो गया, सोचा जी बड़ी हमारी बदनामी होगी, इसलिए इसको ठक करके रखने में ही भूल जाए। और उस लड़के ने कहा और पराशर जी ने कहा कि तुम कुंवारी की कुंवारी बनी रहेगी, तुम पर कोई अपवाद नहीं आएगा, और विश्व में तुम बड़ी प्रसिद्ध हो जाएगी, तुम्हारा लड़का विश्व का एक नामी व्यक्ति होगा, और तुम्हारा जो पति होगा वो भारतवर्ष का सबसे समृद्ध चक्रवर्ती राजा होगा। सुन करके उसको कुछ सांत्वना हुई, घर लौटी, किसी को बतलाया नहीं। कुछ दिनों के बाद में शांतनु भीष्म पितामह के पिताजी घूमते घूमते उधर में आए, इस लड़की को देखा, देख करके उसके पिताजी से कहा ये तुम्हारी लड़की है, मन होता है तुम्हारी लड़की नहीं, नहीं तो तुम्हारे वंशति तो है नहीं, तुम हमको दे दो इसे मैं शादी कर दूंगा। तो उसने कहा कि मैं आपको ये लड़की नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। क्यों नहीं देगा? इसलिए कि इसके गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो राजा होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा तो भी पितामह है, वो बड़ा योग्य लड़का है, मैं उसी को भी राजा बनाऊंगा। और ये कह करके लौट गए, घर में जाकर के बड़े दुखी हो। भीष्म पितामह को पता लगा, वो खुद आए, आकर के कहा कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा और मैं कभी राजगद्दी नहीं लूंगा, तुम्हारे गर्भ से इसके गर्भ से जो बच्चा होगा वही राजा होगा, इसलिए इस लड़की को दे दो, हम अपने पिताजी के साथ में शादी। उन्होंने शादी किया और उसी से विचित्र ब्रज चित्रांगद ये दो लड़के पैदा हुए, इसके बाद में सब आप लोग जानते। तो वही उसका नाम था मत्स्यधरी, किंतु पराशर के साथ में जहाँ उन्होंने देखा उसका वह गंध उड़ गया, और उसके बदले में चंदन जैसा सुगंध शीतल गंध जैसे उनके शरीर से आया, इसलिए व्यास जी का जन्म उसी जगह हुआ। मत्सोदरी से धीरे धीरे बदलते 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 छायरी के रूप में वो प्रकट हुआ, अभी तक छायरी गांव है इसी जगह। और भागवत को उन्होंने इसी तरफ में लिखा था, कहाँ कृष्ण गंगा घाट पर बैठ करके भागवत की रचना की, इसलिए हम लोगों का सौभाग्य इसी मथुरापुरी में जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने कंस को मारा, जहाँ पर कंस को मार करके धर्म की प्रतिष्ठा की, यहीं से जाकर के कुरुक्षेत्र में उन्होंने गीता को सुनाया, यहीं यहाँ से गोकुल में जाकर के ब्रज में उन्होंने लीलाएं की, वो स्थान में हम लोग बैठे हैं परम सौभाग्य। एक बात को याद रखो, बात यह है व्यास जी के गुरु कौन है, जैसे गुरु उनका चेला वो एक शेर है तो ये सवा शेर। नारद जी से व्यास जी को कम मत समझिए, नारद जी ने भक्ति का सूत्र लिखा, नारद सूत्र लिखा, और विश्व के गुरु हैं नारद जी, और उनका शिष्य जो व्यास जी ये तो ब्रह्मांडों के ये गुरु हैं। तो जैसा गुरु होना है शिष्य को वैसा होना है, यदि योग्य गुरु नहीं होगा तो शिष्य भी नहीं होगा, और यदि योग्य गुरु होने पर भी उसका योग्य शिष्य नहीं हो तो भी यथार्थ शिष्य नहीं होगा। इसलिए गुरु मिले लाख लाख, व्यास जैसा शिष्य मिले न एक, इस चीज को समझो, ऐसा शिष्य होना पड़ेगा जैसा कि व्यास जी शिष्य। व्यास जी को पुत्र हुए सुखदेव गोस्वामी जी। 16 वर्ष की वो अपने माता के गर्भ में रहे, वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ सुनाया, गर्भ में उन्होंने सब कुछ सुना। सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि बेटा तुम जो भी हो तुम निकल आओ। उन्होंने कहा कि मैं नहीं निकलूंगा, मैं माया में नहीं निकलूंगा, तो माया को हटा देता हूं मैं इतनी शक्ति रखता हूं, नहीं आपके ताने से नहीं होगा। तो किसके ताने से होगा? कृष्ण के। कृष्ण का स्मरण किया, कृष्ण आ गए, बोले तुम कौन है निकल आओ, आप कौन है? मैं कृष्ण हूं। ओम आप कृष्ण, तो मैं माया में नहीं आऊंगा, तो ठीक है मैं माया को हटा देता हूं। एक कितने के लिए?
एक
पलक से भी पहले। अब उन्होंने हटाया माया को, कृष्ण चले गए। उन्होंने कहा कि मैं माया में नहीं आऊंगा, तो व्यास जी कह रहे हैं कि इतनी मैंने परिश्रम की, उसको वेदों का तत्व सुनाया, उसको बतलाया जीव कौन है, भगवान का अंश है, अपने दोषों से भगवान को भूल करके ये संसार में चक्कर खा रहा है, उसको हमने वेदांत उपनिषद सब के तत्व सुनाए, गीता का तत्व सुनाया, सब कुछ किया, जगत से वो निर्मोही निर्वेद प्राप्त है, सब तत्व उसको जानता है वो। मैं सोचा था इसको भागवत सुनाऊंगा, किंतु भागवत सुना नहीं सका, और ये भाग करके चला जा रहा है। करोड़ों में से एक ये शिष्य के योग्य है, इसलिए बेटा 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 करके उसके पीछे चले, हा पुत्र हा पुत्र हा। किंतु अभी तब तक उन्होंने ये लीला नहीं आरंभ की थी, जो श्रीमद् भागवत रसपूर्ण ग्रंथ है उसको विश्व को देना है, इसलिए भगे जा रहे थे पीछे से। फिर व्यास जी ने उनको भागवत के दो श्लोक, पहला श्लोक
बरहापीडम
नट प्रभु कर्णयो कर्णिकारम विप्रद भाषा करण कपिशम वैजयंती चमालाम रंध्रान वेरु रथ सुदया पूयंतु गोविंदै वृंदारण्यम शबदरमणम प्राविशत गीत। अत्यंत सुंदर उन्होंने श्लोक सुनाया पहली के माध्यम से। उन्होंने कहा इसके गुण कैसे हैं, इसका रूप ऐसा है, तो जिन्होंने ओ बकीयम स्तन काल कुकर, ओ ये बकी अर्थात पुतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके आई और उनको पिलाई, मारना चाहा और उन्होंने उसे माता की गति दे दी, ऐसे दयालु कृष्ण को छोड़ करके ऐसा कौन है, कोई भी अवतार में ऐसा कौन है जो उसको माता की गति दे सकता है, आराम भी नहीं दे सकते, मर्यादा में बते हुए हैं, वैसा भजन करो तब, नहीं तो राम ऐसे नहीं देंगे, दे सकते हैं तो कब देंगे, यदि कोई ऐसा भजन करे माता जैसा तब तो देंगे, और नहीं तो नहीं देंगे। और ये दूध पिलाने आई, एक माता का भाव केवल रूप बनाया और उसने उसको मारना चाह उसी रूप में छल बल करके, किंतु कृष्ण ने उसे छल से मार करके और उसको माता की गति दे दी। उतना थी कौन, रुधिर आशीना, रुधिर और रक्त को खाने वाली, छोटे छोटे कोमल कोमल बच्चों को पकड़ करके चिबा जाती, ऐसी हत्यारिन थी और उसको ये गति दे दी। इसलिए कृष्ण को छोड़ करके कौन किसका भजन करे, किसी का नहीं। और साथ ही साथ सुखदेव जी दौड़ करके उनके पास आए और नंगे धड़ंगे बोले जी हमको वो सारी पुस्तक सुनाइए। उन्होंने उनको सुनाया, तो शिष्य कैसा हो, संसार से यदि निवृत्त हो, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण हो, ऐसा यदि शिष्य लाखों लगाने से एक मिल सके, तो एक ही शिष्य विश्व को ब्रह्मांड को उद्धार कर देगा। जैसे गौर किशोर दास महाराज जी के शिष्य कौन थे, भक्ति विनोद
ठाकुर,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती कृष्णा, और लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य कौन थे, एक शिष्य ही विश्व को एकदम भक्ति रस से परिपूर्ण कर देगा। इसलिए योग्य शिष्य भी ऐसा हो, योग्य गुरु उनको ऐसा ही शिष्य बनना पड़ेगा, उसका जीवन सुखी हो जाएगा। हम समझते हैं कि संसार में सुखी होने से, रुपए पैसे धन संपत्ति प्रतिष्ठा से हम सुखी हो जाएंगे, कदापि नहीं। लाखों लोग हैं जिनकी कितनी प्रतिष्ठा और कितनी क्या है, यदि भजन नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए योग्य शिष्य वह है जो कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता संसार का। क्या चाहता है? गुरु जी मैंने यह हृदय, मैंने यह शरीर, बुद्धि, वाक्य सब कुछ आपके चरणों में न्योछावर कर दिया, अब आप हमें संसार से उद्धार करके कृष्ण भक्ति का रसपान हमें कराइए, मैं और कुछ नहीं चाहता, बस एक चीज यही चाहता। यही योग्य शिष्य है, उत्तम कुल में पैदा हुआ होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। उत्तम कुल माने क्या? चाहे वो वैश्य हो, चाहे किसी भी कुल में हो, जन जाति में हो, किंतु उसका माता पिता गुरियन जो हैं वो उन्नत विचार वाले हो, नहीं तो नहीं हो सकता है। उसमें आलस्य नहीं रहना चाहिए, आलस्य रहेगा नहीं भजन का। गुरु यदि कहें कि प्राण दे दो, साथ साथ में प्राण हाजिर है। गुरु जी से पहले उठे, गुरु जी उठते हैं 3 बजे, तो शिष्य कब उठेगा? 2:30 बजे उठेगा। गुरु जी रात में सोते हैं 1 बजे, तो ये कब सोएगा? 2 बजे सोएगा। क्यों? उनकी सारी सेवा कर। गुरु जी क्या चाहते हैं मनी मन में वो जान ले, जैसे गुरु जी ये चाहते हैं। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितं जेनु, हमारे गुरु जी क्या चाहते हैं? गुरु जी कहेंगे तब हम करेंगे, ऐसा नहीं। गुरु जी क्या चाहते हैं पहले से वो समझ ले और उसके इच्छा अनुसार उस काम को परिपूर्ण कर दे, तो वो पक्का शिष्य, उत्तम शिष्य है। और गुरु के कहने पर जो करता है ये मध्यम कोटि का है। और गुरु जी के आदेश देने पर भी गुरु जी ने कहा सुनहरी लाल जी को बुला लाओ, तो शिष्य कहता यदि सुनहरी लाल जी न मिले तो। अच्छा मैं पैदल जाऊं या साइकिल ले लूं? फिर पूछेगा अच्छा मान लिया कि यदि मिल गए तो उनको क्या कहूं? इस तरह से तरह तरह की बातें करता है। ये कौन सा शिष्य है? अधम शिष्य। और नराधम शिष्य कौन है जो गुरु के कहने पर भी उनके आदेश को किसी तरह से नहीं मानता? वो शिष्य ही नहीं। इन चीजों को विचार कर वो क्या है, सेवक से निकल गया तो बाकी रह गया क्या? बक। गुरु जी का आदेश ही पालन नहीं करता तो बक नहीं, तो क्या है? एक पैर पखड़ा रह करके सोता कि राम राम बगल में छुरी। इसलिए ऐसे सेवकों की जरूरत नहीं है, उनको कृष्ण प्रेम नहीं होगा। इसलिए सेवक तो वह है जो गुरु जी की हृदय की अभिलाषाओं को जान करके और उसको परिपूर्ण कर दे, ऐसे शिष्य होने की जरूरत है। गुरु जी ने कहा देखो संसार की कामनाओं को त्याग दो और भद्र बन करके आओ। भद्र माने क्या? भद्र किसको कहते हैं? वेश से भद्र और रूप से भद्र, भावों से भद्र। ठीक है, आज से कहा बस आज। गुरु जी ने कहा प्याज लहसुन छोड़ दो। अच्छा गुरु जी मैं कल परसों से कहा मैं चेष्टा, चाय मत पीना उसमें कैंसर के बीज हैं, बहुत दिनों की आदत है गुरु जी। तो ठीक है मैं चेष्टा करूंगा। अपने ही बात रखे, गुरु जी की बात ना करें, तब तो फिर शिष्य क्या हुआ? तो अपना प्राण क्या दे दे? जितने शिष्य देखो, अरुणी का नाम सुना, गुरु जी ने कहा मेड़ बांधो, मेड़ पर गए, वर्षा खूब जोर से हो रही है, रात का दिन, रात का समय और माघ का महीना, बर्फ पड़ रही और जोर से वर्षा हो रही। उन्होंने चेष्टा की मिट्टी से मेड़ को बांधने के लिए, नहीं हुआ। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपने आप सो गए, ठिठूर करके बर्फ हो गए, अप्राण जाने वाले हैं। इतने में गुरु जी अरे अरुणी तू कहाँ, तू कहाँ? गुरु जी मैं सोया। क्यों? उठ करके आ जाओ, उठ ही नहीं सकते। उठने का ही क्या, ये यहाँ पर क्यों पड़ा, मिट्टी नहीं अड़ सकी इसलिए मैंने यहीं पर मेन को बांधने के लिए मैं यहाँ। अच्छा अच्छा, बच्छुआ और उठते ही एकदम उनका शरीर ठीक हो गया। सारे वेद उपनिषद जिसके लिए तू हमारे पास में आया था सब तुम्हारे हृदय के अंदर में संचरित हो गया, ऐसा वो हो गया। कृष्ण और सुदामा का चरित्र आप लोग जानते हैं। अरे भगवान हो करके भी गुरुवाणी का आदेश, गुरु का डायरेक्ट आदेश नहीं था, गुरुवाणी का आदेश। लकड़ी बिनने के लिए गए, वर्षा होने लगी, फंस गए, रात भर वर्षा होती रही, वहां से नहीं निकल सके। लकड़ी की गट्ठी सिर पर रख करके रात भर खड़े रहे। हम रहते तो लकड़ी फेंक देते, गुरुजी को छोड़कर गुरुजी के पास नहीं लौटते, उधर ही से उधर अपने घर चले जाते। हम लोगों में ऐसे बहुत से हैं, यदि गुरु ऐसा कोई आदेश दे तो गुरुजी की कंठी माला, ये तुम्हारी कंठी और ये तुम्हारी माला और रहे तुम्हारे पास में, मैं अब चला। अरे भाई क्यों जा रहे हो, गुरु जी कह रहे हैं अरे हम अपनी संपत्ति तुम्ही को लिख देंगे, पूरी संपत्ति, ये जो मंदिर का महंत पानी है सबसे दी। नहीं गुरु जी मैं अब नहीं रहा। तो गुरु जी बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं वो, तो गुरु ऐसे चेला वैसे दोनों नरक में जाकर के जहन्नम में मिले। इस चीज को समझो, यहां पर भी जो भजन करने के लिए आए हैं वो अपने प्राणी को हाथ प्राण को हथेली पर रख करके रहे, और नहीं भजन नहीं हो सकता। जो गुरु के आदेश को नहीं पालन कर सकता उनके अंदर में श्रौत वाणी कैसे आएगी, नहीं आ सकती, वो तुम्हारे साधु से नहीं आएगी, ये भगवान और गुरु की कृपा से होगी। लाख साधन करते करते रच पच जाओ, जाना है रच पच जाओ, साधन से नहीं होगा, ये कैसे होगा, गुरु की कृपा से। ये कृपा सिद्ध है, या तो भगवान की कृपा हो या गुरु की कृपा हो, गुरु भी वैसे ही हो तब होगा, ऐसे नहीं होता। भजन ऐसी चीज नहीं है एक दो दिन में मक्खन या राबड़ी नहीं, ये मुख नरम मथुरा का रसगुल्ला दे दिया, स्पंज रसगुल्ला हो गया, ऐसा नहीं है। इसलिए कड़ा साधन करना चाहिए। लाखों शिष्यों में से दो एक ही शिष्य होते हैं जो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए कहा कोटिस्वपि, इसलिए व्यास जी का आदर्श लो। नारद जी का, व्यास जी का, सुखदेव जी गोस्वामी का, अभी पिछले भक्ति सिद्धांत सरस्वती और गौर किशोर दास महाराज, नरोत्तम ठाकुर और लोकनाथ जी का, रघुनाथ जी का चरित्र याद रखो यदि भजन करना है सतपुरुष में, रूप गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी का याद रखो कैसे कष्ट सहे। आज हमको एक आदमी सनातन गोस्वामी का स्मरण करा दिया, उनके स्थान से आया और हमको एक छोटी सी आटा की टिकिया आग में सिकी हुई हमको दे गया। कभी उन्होंने जब से घर से छोड़ा नमक मिला करके कुछ नहीं खाया, कोई चीज किसी के घर में चुपड़ी हुई रोटी नहीं लिया, कभी एक वृक्ष को छोड़ करके अपना डेरा कहीं नहीं बनाया, कभी चना कभी मना, कभी रात भर में एक खड़ी सोलिया कभी वो भी नहीं। भाई ऐसे भजन होता है, गुरु जी हमको सब कुछ दे दीजिए, हम कुछ करेंगे नहीं, साधन भजन नहीं करेंगे, बस आप कृपा कर दीजिए हमको हो जाए, ऐसे भी नहीं होगा। गुरु कृपा तो है किंतु उसके लिए साधन भी करना, इसलिए आप लोग इन चीजों को ध्यान रख करके साधन भजन करेंगे। गुरु जी आपको धन देने के लिए नहीं आया, आपको बेटा नहीं है तो गुरु जी ऐसा करेगा जब बेटा दे दे, शुद्ध गुरु नहीं देगा, तुमको भक्ति रूपी बेटा देगा या बेटा देगा बेटी देगा, इन चीजों को याद रखो, तुम्हारा जन्म जन्म का कष्ट दूर हो जाएगा और भगवान के चरणों में प्रेमा भक्ति होगी। इन चीजों को समझो, छोटी सी किशोरी मेरे सामने में, जल्दी 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 दोनों तरफ से तैयारी हो गई, और उस समय में व्यास जी की इच्छा हुई युद्ध बंद हो जाए तो ठीक है,
पांचों पांडवों के पास में गए, कृष्ण वहां पर बैठे थे, उन्होंने कहा मेरी बात मानोगे, युद्ध बंद हो जाए तो अच्छा है, आप जो कहिए वही, अभी जो कुछ कहेंगे हम लोग काटने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, मैं जरा उस खेमे से घुमाऊ। उधर में गए, उन्हें लगा युद्ध का नतीजा बड़ा भयंकर होगा, सारे लोग मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, फिर कौन राजा होगा। जरा दूरदृष्टि से देखो, धृतराष्ट्र को समझाया, दुर्योधन को समझाया, काफी समझाया, आपकी बातें बड़ी सुंदर है और हमारे सिर पर रहे, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा, हमारा मन नहीं मानेगा। आपके उपदेश बड़े सुंदर हैं, ये बात ठीक है, शास्त्र संगत हैं और गुरु को जैसा कहना चाहिए वैसे ही सुंदर हैं, हमारे लिए कल्याण का जनक है, किंतु हमारा मन नहीं मानता, इसलिए हम पालन नहीं कर सकते। मैं आपका शिष्य हूं, हमारे ऊपर में कृपा की, ऐसे शिष्य से काम नहीं चलता, बात नहीं माना। किंतु पांडवों ने उनकी बात मान ली, उन्होंने सोचा कि ये हमारी बात तो मान लेंगे, हम जो कह देंगे वो करेंगे, वो हम कर देते। किंतु कृष्ण वहां पर बैठे हैं, लगाम उनके हाथ में है, वो पृथ्वी का भार धारण करना चाहते थे, इसलिए वही हुआ जो भगवान कृष्ण की इच्छा की, इसलिए उन लोगों ने बात नहीं माना। गुरु कह सकता है किसी को, जे ऐसा चलो भगवान का भजन करो, अन्या विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनाकृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम, अनुकूल चीजों को ग्रहण करो, प्रतिकूल को प्रत्याग करो। यदि गुरु से हरिनाम दीक्षा इत्यादि लेकर के भी सब समय गुरु के अंगत रह करके, सुसंगत में रह करके भजन नहीं करेंगे, यदि नीचे के लोगों से, अर्थात हम जितने स्तर के हैं उससे नीचे के स्तर से मिलेंगे, कुछ दिन में तुम्हारा चरित्र और चित्त मलिन हो जाएगा और फिर तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अनुकूल को ग्रहण करो, प्रतिकूल को आवर्जन करो, जिसमें भक्ति है और जिसे हमसे उन्नत है ऐसे लोगों का ही सब समय संग करो, और नहीं तो क्या होगा। इस चीज को खूब अच्छी तरह से समझो, अपने से उन्नत, अपने जैसा भाव, स्वजातीय स्निग्ध आशय, माने क्या आशय माने होता है हृदय, स्वजातीय हम जिस चीज को जैसा चाहते हैं, कृष्ण का भजन जिस रूप में करना चाहते हैं, हमारे गुरुदेव इस विषय में एकदम सीमा तक हैं। हमको ये देखना है कि हमारे गुरु जी क्या चाहते हैं, हमको जगत का मन नहीं देखना है। जब मैं आया गुरु जी के पास में, गुरु जी ने कहा कि हमारी इच्छा है जो तुमको हरिनाम और दीक्षा दे दें। मैंने कहा उनसे कि मैंने अपने पिता का स्नेह, माता की ममता, अपनी पत्नी के प्रति जो अपना भाव है, संतान के प्रति जो कुछ हमारा है, आज सर्वस्व उनके चरण सबसे लेकर के आपके चरणों में न्योछार कर रहा हूं। आप मुझे नंगा रखिए, संन्यास दे दीजिए, अथवा आप मुझे ब्रह्मचारी रखें, या सफेद कपड़े में रखिए, लाल कपड़े में संन्यास, हरिनाम दीजिए न दीजिए, अब आपके चरणों में हमने समर्पण कर दिया। और जब तक रहे मैं उनकी इच्छा के विपरीत, कभी भी मैंने स्वप्न में भी कोई नहीं, कोई चिंता ही नहीं की ऐसे आप लोग भी ऐसा करेंगे, ऐसा सोचेंगे जो गुरुदेव क्या चाहते हैं। किंतु गुरु भी ऐसे होने चाहिए जो कृष्ण की भक्ति के तरफ में हमको ले जाना चाहते हैं, और कुछ नहीं। किंतु भाई कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा हमें उस आदेश को पालन करना, उनके मन की भावनाओं को जानना पड़ेगा, और उनके संग में रह करके वो जैसा चाहते हैं अपने को ढालना पड़ेगा भाई। इसलिए इसके लिए हम लोग प्रस्तुत रहेंगे, तब तो भाई भजन होगा, अन्यथा भजन नहीं होगा। जरा वो गुरु का वो कीर्तन हिंदी वाला कर दो तो कौन सा। थोड़े दिनों के बाद गुरु सेवक कैसा होना चाहिए? हम लोग के गुरु जी का नाम ओम विष्णुपाद सुक्तर से श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान के स्वरूप स्वामी महाराज। गुरु जी अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के लिए अपनी हथेली को प्राणों को रख करके चलते थे। गुरु कौन है? शब्द स्वरूप कृष्ण है। झूठ से कोई मीमांसा नहीं करता, समझौता नहीं, कभी नहीं। यदि झूठ जैसे चीज भी कोई है जो हमारे समझ में नहीं आती, किंतु गुरु यदि शुद्ध हैं और सच कुछ हैं, तत्वज्ञ हैं, तो तुम्हारे के समझ में आती है चाहे नहीं आती है, उसको सत्य मानो। जैसे कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज जी से कहा, अश्वत्थामा मारा गया कहो, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सत्य खोज की छानबीन की, तो हाथी मारा गया, आदमी तो मारा नहीं गया। कृष्ण ने कहा जैसे गड़बड़ कर दिया, ये पक्का शिष्य नहीं रहा। फिर को कहा जाचे हाथी मारो और तब के लिए कर, तो हाथी मारा गया अश्वत्थामा नाम का। कहा अब कहो, कहा ठीक है मैं ये कहूंगा अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, तभी कृष्ण की बात नहीं मानी। कहा ऐसा ही कहो, तो जब ही अश्वत्थामा मारा गया तब कृष्ण ने शंख बजा दिया। उनकी इस बात को छिपाने के लिए जो ये झूठ बोल रहा है कौन, युधिष्ठिर बोलेगा मैं कह रहा हूं इसको नहीं मान रहा है, इसको इतनी बुद्धि नहीं है, हमारी बात पर ये खुदा पर खुदागिरी करता है, इसलिए उसको छिपाने के लिए शंख बजा और चारों तरफ में शंख बज गया, उनकी आवाज दब गई। उनको बड़ी ग्लानी हुई युधिष्ठिर जी को, हम सत्य नहीं बोल सके, अश्वत्थ हमारा गाय ये कह दिए, हमारी पिछले वाली बात को नहीं सुना लोगों ने, किंतु हुआ क्या उल्टा। कृष्ण ने कहा मैं जो कहता हूं इस पर ये विचार करता है, अरे मैं सत्य हूं, त्रिसत्य हूं, सत्य का ज्योनी हूं, सत्य का मूल स्थान हूं, और हमारे लिए ऐसा विचार करता है, इसको हमारी बातों में विश्वास हो। अरे हमारे पिताजी बड़े अच्छे हैं, उनको कहा तुम हमको वहां ले जाना, किसी से कहना मत, वसुदेव जी को, उनके जितने भी पुत्र होंगे उन्होंने प्रतिज्ञा की थी ये देंगे, कंस को मारने के लिए दे देंगे, किंतु जब कृष्ण पैदा हुआ तो उन्होंने कहा ये तुम सत्यवादिता रख दो, कहा रख दो सिक्के पर उठा दो और तुम हमको दे आना वहां। उन्होंने किया कि नहीं? वैसा ही किया। तो युधिष्ठिर बड़े हैं ना, वो बड़े हैं, युधिष्ठिर तो बहुत बड़े सत्यवादी है, क्योंकि कृष्ण का कहा हुआ परम सत्य है उनकी समझ में नहीं आया। तो कभी कभी शिष्य ऐसा सोचता है कि हमारे गुरु जी शायद ये झूठ बोल रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनकी बात को नहीं समझ पाते, इतने तो हाई स्टैंडर्ड के लिए। गुरु जी अपने गुरु जी की समस्त बातों को अच्छी तरह से समझ करके सब समय प्राणों को हथेली में लेकर के चलते थे। परिक्रमा हो रही थी नवद्वीप की और लोगों ने प्रभुपाद को झूठ समझा, अरे हमारे समस्त बच्चों को बिगाड़ करके ये ले रहा है, हमारे अच्छे अच्छे इंजीनियर वकील डॉक्टर लड़के धन कमाएंगे और अच्छी तरह से रहेंगे, और ये सबको लेकर के गले में कंठी माला दे करके और इनको संन्यास दे करके ब्रह्मचारी बनाए इनको बिगाड़ रहा है। समाज के सारे लोग इन चीजों को नहीं समझ सके, ये परम सत्य है, हम भगवान के ही एकमात्र दास हैं, भगवान को भूल करके शिवरते हैं, संसार का रिश्ता सब झूठा, इस सत्य से समझौता नहीं करना है, किंतु छल बल कर से लोगों को भगवान की भक्ति में लगाना है। समाज के लोग इस चीज को सत्य को नहीं समझ सके, इसलिए प्रभुपाद को जान से मारने की चेष्टा की और गुरु जी ने उनको अपना कपड़ा दे करके सफेद
और उनका संन्यास का वस्त्र ले लिया और उनकी रक्षा की और उनको वहां से मायापुर में भगा दिया। ऐसा कौन कर सकता है? लाखों उनके शिष्य थे, उस समय सभी भूल गए, अपने प्राणों को लेकर के भगे, बस केवल हमारे गुरु जी थे। जो गुरु जी का त्याग हुआ, गुरु जी का, अरे जाको राखे साइया, अरे यदि कृष्ण ही उसके रक्षे कौन मारेगा? तो अभी एक निमित्त तो ऐसा साहस तो दिखलाना है। ये गुरु सेवा है, इनका कितना हम आदर्श दिखलाएं अपने गुरु जी का, इसलिए उनके चरणों में हम लोगों ने न्यौछावर कर दिया। कभी भी ऊपर कहीं ये विचार नहीं किया ये सत्य बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कि ये परम सत्य बोल रहे हैं। ऐसा ही गुरु के चरणों में रखना पड़ेगा। आप लोगों ने परम पूज्य बात हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता पूज्यपाद भक्ति वेदांत बामन महाराज जी का नाम सुने, बचपन से 8-9 वर्ष की उम्र से गुरु जी के पास, उन्होंने कभी विचार नहीं कि मुझे भजन करना है कि क्या, उनके चरणों में समर्पित कर दिया, प्रेस में लगा दिया, दिन भर प्रेस में गौड़ीय पत्रिका छापना और पुस्तकें छापना। हरिनाम करने का समय कहां, कभी कलकत्ता जा रहे हैं वो चटकटी पहनकर, चटकटी मैंने जानते हैं लकड़ी का खड़ा एकदम चट 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 करके कलकत्ते जा रहे हैं, कब आएंगे कोई ठीक नहीं, पूरा काम करके दिन भर बिना खाए पिए, हरिनाम की माला हुई कि नहीं इसके बीच, यहां तक कि एक दिन प्रेस में काम करते समय पूरा हाथ चला गया प्रेस के अंदर में और कट गया, चिपट गया, उंगली कट गई, सब कुछ हो गया। गुरु जी वहीं पर थे, सुनते ही आंख से आंसू आ गए, उनको पकड़ करके कलकत्ता ले गए, उनकी चिकित्सा कराई, बहुत दिनों के बाद वे ठीक हुए। ये सब सेवाएं हैं, समर्पित सेवाएं हैं। ये नहीं विचार, पहले गुरु को विचार कर लो, ये गुरु सदगुरु हैं बस, और इसके बाद में उनके बातों पर विचार मत करो, एकदम संपूर्ण रूप से पालन करने की चेष्टा करो। कभी कभी हम लोग गलती करते हैं, गुरु जी मैं पढ़ूंगा, ठीक है पढ़ो, पढ़ने के लिए घर से आया था, ठीक है गुरु जी अच्छा तब तुम पढ़ो, तुम पढ़ करके देख लो, 10 जन्म पढ़ो, अनुस्वार विशाल इत्यादि पढ़ो, जब देख लेना इसके द्वारा नहीं होगा तब फिर भजन करना, हमारी बात मानना। पहले पहले गुरु को देख लो, ठीक है, और जो कहते हैं उनकी बात मानना ही भजन है, इस चीज को समझो, जिस रूप में चलाते हैं चलो, पढ़ लिख करके भी पढ़िया सुनिया लोग गैलो, कृष्ण महा महोत्सव वंचिरत, इस चीज को समझो। बाल महाराज जी का क्या हुआ देखो, वेद शास्त्र समस्त उनकी स्फूर्ति है, इस समय गौड़ीय विश्व भर में वो कोष हैं श्लोकों के, सारे श्लोक उनको याद है। हम लोग रटते 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 2 दिन रट करके एक श्लोक या फिर दूसरे दिन भूल जाएंगे, उनको कोई श्लोक ही भूलने की नहीं, सारे श्लोक कंठस्थ वेद उपनिषद शास्त्र के सब जितने अच्छे अच्छे श्लोक, ये सब गुरु कृपा है। हम लोग गुरु कृपा का अनुभव करते हैं, हमारे गुरु जी के एक शिष्य थे हमारे गुरु भाई, छोटा सा लड़का, बड़ा सुंदर असामी लड़का, अनंग महल उसका नाम था, बड़ा सुंदर मृदंग बजाता था और कीर्तन करता था, गुरु जी की सारी सेवाएं करता था। हमारे आने के पहले हमने उसको देखा, अंत समय में उसको टीबी का रोग हो गया। कैसे हो गया? गुरु जी का इतना शिष्य सेवा करने वाला हो सकता है? गुरु जी किसी को दीनता लाने के लिए ऐसा करता है, किंतु उसका अंत देखो विचार करके, मैं मेरी उनकी सेवा करने के लिए हमको नियुक्त तो कर दिया, कोई नहीं जाता था पास में, मैं उसकी टट्टी तक फेंकता था। हमारे पास में नौकर थे रसोई के लिए, मैं रसोई उसके लिए बनाता, सब कुछ छोड़ दिया और उनके पास में रह करके, एक और बाबा जी रहते थे हम लोग मद्रास में उनके पास, अंतिम समय में वो कह रहा है हे राधे हे कृष्ण मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मुझे कृष्ण वृंदावन में बुला रहे हैं, राधे 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 कृष्ण। डॉक्टर नब्ज देख रहा है, नब्ज नहीं है, मैंने देखा जी इतना तत्वज्ञानी नहीं था, कोई शास्त्र भी याद नहीं थे, गुरु जी की सेवा करके अंत में देखा उसकी, मैंने कहा जी प्रभु हम पा रहे हमारी पर नहीं कृपा, आप वृंदावन जा रहे हैं हमें भी ले चलेंगे कभी, देखिए देखा जी उसी की कृपा से हमको भी देखिए ब्रज भाई वास हो गया उसी की कृपा से, मैं समझता हूँ एक निरक्षर लिखा पढ़ा नहीं कुछ जानता, गुरु जी की सेवा करने से गुरु जी प्रसन्न हो गए। और देखो उसकी अंतिम गति यदि आजामिल नारायण का नाम कहने से मुक्ति को चला गया वैकुंठ धाम में, और वो कह रहा है हमको बुला रहे हैं वृंदावन में, राधे राधे कृष्ण बुला रहे हैं, मैं अभी वृंदावन जा रहा हूं, और राधे राधे कृष्ण कहते कहते उसके प्राण निकल गए। बतलाओ तो कितना दिव्य शरीर उसका चेहरा उस समय बना हुआ था, ये गुरु की कृपा है, गुरु के कृपा पर के लिए उन पर भरोसा करो विश्वास करो, गुरु के ऊपर में विश्वास नहीं है क्या भजन करेगा, लाख रच पच जाओगे। हमको लोगों ने कहा जो संस्कृत पढ़ लीजिए, उस समय में 24 वर्ष का मैं आया मठ में, हमको दिन रात गुरु सेवा से और कोई फुर्सत नहीं थी, कभी कभी मैं 1 लाख नाम हरिनाम करने की चेष्टा करता, कभी कभी नहीं भी होता था। गुरु जी का देखा मैंने आदर्श अद्भुत, मैं क्या उनकी महिमा का नाम, उनकी कुछ सेवा किया, आज मैं देख रहा हूं जो जगत के लोग चाहते हैं, आज विश्व के कोने कोने में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं, देश नहीं, बड़े बड़े विद्वान नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े लोग हमारे चरणों में गिर रहे हैं, ऐसी कोई देश नहीं जहां पर नहीं गया मैं, और आदर नहीं करते, सुनते नहीं। इसलिए मैं अंग्रेजी भी नहीं बोलता था, संस्कृत में 100 अनुस्वार नहीं मैं जानता था, हिंदी में मेरी अच्छी नहीं थी, साधारण थोड़ा सा क्लास 2 फेल, ऐसे ही विद्या। और देखो एक गुरु से मैं अभिमान करके नहीं कहता, मैं आप लोगों के लिए कहता हूं, इस तरह से देखो आज उनकी कृपा। मैं कभी कभी सोचता हूं ये हमारे लिए ये खराब है, ये संसार में भ्रमण करके जो कर रहा हूं, हमको हरिनाम करने का समय नहीं मिलता, उच्च कोटि के जो ग्रंथ है उसको अनुशीलन करने का समय नहीं मिलता, फिर भी देखता गुरु जी की कृपा, ऐसे सुंदर सुंदर भाव अपने आप आ जाते हैं जिनको बड़े बड़े विद्वान लोग उनके हृदय में नहीं आते, ये सब गुरु की कृपा। मैं अपना अनुभव इसलिए बतला रही हूं तुम लोग इसे सीखो, यही भजन है, यदि सदगुरु हैं गुरु तो उनकी सेवा करने से सब कुछ अपने आप अंतरात्मा में स्फूर्ति होगी, अवश्यम भावी होगी। इसलिए उनके वचनों में विश्वास रख करके हरिदास ठाकुर के कॉलेज में जाओ, हरिदास ठाकुर का कॉलेज क्या है, हरिनाम संकीर्तन का, हरिनाम हरे नाम हरे नाम वही देखे कलु नास्ते नास्ते नास्ते, जीवन बर्बाद मत करो पढ़ने दिखने में अधिक, जो विद्या है उसको ग्रहण करके हमारी इस सौत विद्या को ग्रहण करने की चेष्टा करो, और ये भगवत कृपा गुरु कृपा के बल से आएगी। इसलिए गुरु यदि शुद्ध हैं उत्तम कोटि के हैं उनके वचनों में विश्वास रखकर उनकी सेवा के द्वारा इस प्रेम को लाने के हृदय में चेष्टा करो, इससे बढ़कर के कुछ उनकी इच्छा हो सब कुछ जो कुछ इच्छा हो किंतु उनकी इच्छा के अनुसार सब चलो और भजन। अभी नन्नू मल जी एक कीर्तन कर।